मेरे बहुत बहुत प्यारे दोस्तों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज 6 जून 2016 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में मैं आप सभी प्रिय श्रोताओं का 2 दिनों के गैप के बाद हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और इसी क्रम में मित्रों, मैं स्वागत करता हूं अपने उन 6 नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की सितंबर अक्टूबर में होने वाली 15 दिन की क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन साथियों के नाम हैं हेमंत तिवारी, आप छतरपुर से हैं, आर्यन कुमार, आप जामुई बिहार से हैं, रमाकांत बाराबंकी उत्तर प्रदेश से हैं, आमोद कुमार लखनऊ उत्तर प्रदेश से हैं, नम्रता सिसोदिया मंदसौर मध्य प्रदेश से हैं और अनुराधा कुमारी जिन्होंने अपने स्थान का नाम नहीं लिखा है। तो दोस्तों, हेमंत, आर्यन, रमाकांत, आमोद, नम्रता और अनुराधा, आप सभी साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और फ्रेंड्स, आज सप्ताह की शुरुआत है और अपने रजिस्टर्ड हुए सभी स्टूडेंट्स से और नो डाउट कि अपने सभी डेली ऑडियो गाइडेंस के प्रिय श्रोताओं से मैं अनुरोध करूंगा, अपील करूंगा कि वे प्लीज जो डेली ऑडियो गाइडेंस है उसके सुनने की सततता को, निरंतरता को, कंटिन्यूटी को बिल्कुल बाधित न होने दें। चाहे कोई भी कितना भी जरूरी काम क्यों ना आ जाए, क्योंकि इस बीच में मित्रों मुझे कुछ ऐसे मेल मिले जिन्हें सचमुच पढ़ने के बाद मुझे थोड़ा दुख हुआ, और वो ये कि मैं 1 महीने से मेल नहीं पढ़ पा रहा हूं, मैं 2 महीने से मेल नहीं पढ़ पा रही हूं, उसके लिए क्षमा चाहूंगी। मित्रों, मुझसे क्षमा मांगने से क्या होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं अगर क्षमा कर भी दूंगा तो उससे क्या होगा, और सच बात यह है कि मैं इसे अपराध ठहराने वाला होता कौन हूं, इसलिए क्षमा करने का मैं इसका अधिकारी भी नहीं हूं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि जो चूक आप करेंगे, जो चूक आप अभी करेंगे, इसके लिए करेंगे, खासकर इस डेली ऑडियो गाइडेंस के बारे में, इसकी फिर भरपाई नहीं है। ये आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए, उसकी कोई भरपाई नहीं, मेरी क्षमा कर देने से उसकी भरपाई नहीं हो जाएगी। जो नुकसान होगा वो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ आपका होगा, और नो डाउट कि जो फायदा होगा वह सिर्फ सिर्फ और सिर्फ आपका होगा। नो डाउट कि उसमें मेरा निजी फायदा जरूर इतना है कि जब आप अपने किसी सफलता की सूचना मुझे देंगे तो वो क्षण मेरी जिंदगी के बड़े अद्भुत और खिले हुए क्षण हो जाएंगे, बड़ी प्रसन्नता के क्षण हो जाएंगे। तो मित्रों, इसी तरह के प्रसन्नता के क्षण का एक अवसर अनुभव करने का मुझे मौका दिया है अंजू ने, जिन्होंने मेल से सूचित किया है कि अभी यूपीपीएससी का जो प्री एग्जाम हुआ था उसके जो रिजल्ट आए हैं उसको उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है और उन्होंने अपनी इस सफलता का श्रेय इस डेली ऑडियो गाइडेंस को दिया है। तो अंजू, मैं अपने सभी प्रिय श्रोताओं की तरफ से, अपनी एकेडमी की पूरी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से आपको इस सफलता की बहुत बहुत बधाई देता हूं, और मेंस और इंटरव्यू में आपको बहुत अच्छी सफलता मिले इसके लिए हम सब शुभकामनाएं भी प्रेषित करते हैं, आपको बहुत बहुत बधाई। मित्रों, अभी मैंने आपसे डेली ऑडियो गाइडेंस डेली सुनने की बात कही, देखिए इसका नाम ही है डेली ऑडियो गाइडेंस, तो ये डेली लिसनिंग गाइडेंस भी होना चाहिए आपके लिए। अगर मैं इसकी निरंतरता को निभाने में कोई कोताही नहीं बरत रहा हूं, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है कि कोई भी पत्थर अनटर्न नहीं छोड़ रहा हूं, तो दोस्तों ये तो आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है, आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। आज मैं अपने लाइफ मैनेजमेंट में इसी से रिलेटेड एक बात कहता हूं, जिनके बारे में कल के अखबार भरे पड़े हैं, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि दुनिया के जो महानतम मुक्केबाज थे मोहम्मद अली साहब, वो नहीं रहे, क्लेसियस क्ले उनका नाम था। मित्रों, उनके बारे में चलिए हम लोग कुछ चीजें देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, और फिर आप उसे अपने अपने से जोड़ कर देखिएगा, अपने काम से जोड़ करके देखिएगा, और बट नेचुरल है कि तभी आप उसे अपनी उपलब्धियों से भी जोड़ कर देखिएगा। और सच पूछे तो हमें अपनी सारी उपलब्धियों को अपने किए गए काम से ही जोड़ कर देखना चाहिए, सिर्फ अपनी इच्छाओं से नहीं, जैसा कि हम सब अक्सर करते हैं कि मैं चाहता था, नहीं मिला, तो अब मैं दुनिया भर के लोगों को दोष दे रहा हूं, कभी अपने भाग्य को दे रहा हूं, कभी भगवान को दे रहा हूं, कभी अपने लोगों को दे रहा हूं, पता नहीं किन किन को दे रहा हूं सिवाय खुद को। मतलब मैं सच पूछे तो खुद को बचाने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन मित्रों, आप अपने आप को बचा लेंगे, मैं अपने आप को बचा लूंगा, लेकिन क्या वो बचाव वाकई में बचाव होगा? लेकिन यदि आपकी मेहनत पूरी है, आपने कोई स्टोन अनटर्न नहीं छोड़ा है, तब आप अपने को बचा लेंगे, आपको अफसोस बिल्कुल भी नहीं होगा। तो मित्रों, मैं आपको छोटी सी कथा मोहम्मद अली की सुनाता हूं। देखिए कि कैसे लोग महान बनते हैं। एक पहली बात तो ये कि इन्हों द ग्रेट कहा जाता था, और ये जो द ग्रेट भी इन्होंने कहा है ना, ये दूसरों ने नहीं कहा है, मतलब उनका अपना स्वाभिमान देखिए कि उन्होंने खुद कहा कि यस आई एम द ग्रेट, मैं ग्रेट हूं, मैं महान हूं। जैसे कि हमारे रजनीश, उन्होंने कहा कि मैं भगवान हूं, तो आचार्य रजनीश, इसके बाद भगवान रजनीश, और फिर उन्होंने ओशो नाम रख दिया। ओशो का भी अर्थ जापानी शायद ये शब्द है, भगवान ही होता है। उन्होंने खुद कहा, बोले कि दूसरे नहीं कहते तो क्या फर्क पड़ता है, मैं खुद कह लेता हूं अपने आप को, दूसरों को कहने में तो संकोच होता है, ईर्ष्या भी होती है, सच बात दूसरे कहते कहां है, तो मैं कह लेता हूं, मैं सच बात कहता हूं, मैं भगवान हूं। तो लगभग कुछ यही इसी तरह की स्थिति हमारे इन महान मुक्केबाज के साथ भी थी। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी, लेकिन जिसमें बहुत बड़ा संदेश छुपा हुआ है, ठीक उसी तरह से जैसे कि यूरेनियम के एक छोटे से कण में अबाध ऊर्जा छिपी हुई होती है। इसे सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए, और पूरे संवेदना के साथ और पूरे तार्किकता के साथ समझिए, संवेदना और तार्किकता दोनों के मेल से समझने की कोशिश कीजिए। ये यूं ही सुनकर खुश हो जाने वाली चीज नहीं है, ये सच पूछिए तो सुनकर अपनाने वाली चीज है, और कहीं न कहीं सुनकर स्वयं का मूल्यांकन करने वाली भी चीज है। मित्रों, अभी जो अखबार में जो बात छपी थी, मैं उसे ही आप लोगों के सामने रख रहा हूं। यह उस समय की बात है जब क्लेस क्ले नाम था इनका, क्लेसिस क्ले, 12 साल के थे। ये बेसिकली अमेरिकन है ना, अमेरिकन है, अफ्रीकी प्रजाति के हैं आप कह लीजिए, वैसे मूलतः अफ्रीका महाद्वीप के हैं, लेकिन इनका जन्म अमेरिका में ही हुआ और अमेरिकी नागरिक ही शुरू से वो रहे हैं। 12 साल के थे फ्रेंड्स, और इनकी साइकिल चोरी चली गई। जब इनकी साइकिल चोरी चली गई तो उसकी रिपोर्ट लिखाने ये थाने पहुंचे। देखिए, वो अमेरिका के थाने हैं, भारत का थाना नहीं है कि जहां लोग जाने में एक तरह से डरते हैं, घबराते हैं और सोचते हैं कि कभी न जाना पड़े, और वैसे भी ईश्वर न करे कि किसी को कभी जाना पड़े, लेकिन वो जाना डर के मारे सोचते हैं कि न जाना पड़े। तो ये चले गए, 12 साल का लड़का वहां पुलिस थाने में पहुंचता है और थानेदार से कहता है कि सर, मुझे रिपोर्ट लिखानी है, मेरी साइकिल चोरी चली गई है। तो अब देखिए कि क्या होता है। थानेदार उसे कहता है कि तुम रिपोर्ट लिखा करके क्या करोगे, तुमको उससे बदला लेना चाहिए, मतलब जिसने तुम्हारी साइकिल चुराई है तुमको उससे बदला लेना चाहिए। तो अब ये बच्चा, 12 साल का बच्चा है, वो कहता कि हां, मैं उससे बदला लूंगा। तब थानेदार उससे पूछता है, थानेदार कह लीजिए या पुलिस इंस्पेक्टर कह लीजिए, जो भी है वो रिपोर्ट लिखने वाला, उसका नाम मार्टिन था, मार्टिन उससे पूछते हैं, लेकिन तुम बदला लोगे कैसे, तुम बदला लोगे कैसे? तो ये क्लेसियस क्ले कहते हैं कि तुम मुझे उसका पता बताओ, मैं उससे बदला लूंगा। तो मार्टिन समझाते हैं कि नहीं, तुम उससे ऐसे बदला नहीं ले सकते, इसके लिए तुम्हें बॉक्सिंग सीखनी पड़ेगी। अब वो लड़के के दिमाग में ये बात बैठ गई, मतलब ऐसे तो 12 साल का बच्चा उस चोर से क्या बदला लेगा, मतलब उसको रियलाइज हुआ। इसको समझने की कोशिश कीजिए मित्रों, ये कहानी नहीं है, ये मनोविज्ञान है, सफलता का साइंस भी है, विज्ञान है। ये बात उसके दिमाग में बैठ गई कि मुझे बॉक्सिंग सीखनी पड़ेगी, और बॉक्सिंग किसके लिए सीखनी पड़ेगी, उस चोर से बदला लेने के लिए जिसने उसकी साइकिल चुरा ली है। और उस समय क्लेसियस के दिमाग में अपनी साइकिल सबसे बड़ी संपत्ति रही होगी, सबसे प्रिय वस्तु रही होगी, जीवन का पर्याय रहा होगा, आप जो कुछ भी कह लीजिए, वो उस समय उसके लिए थी, बाद में भले ही उसके साइकिल की उसके लिए कोई औकात नहीं रह गई हो और बड़े बड़े कार की भी कोई औकात नहीं रह गई हो, लेकिन आप उस पर्टिकुलर पॉइंट उस पर्टिकुलर समय पर जाकर के जब एंटर करेंगे उसमें प्रवेश करेंगे तब आप इन चीजों को सही मायने में समझ सकेंगे। तो मित्रों जब उस लड़के के दिमाग में ये बात बैठ गई कि मुझे बॉक्सिंग सीखनी चाहिए तो मालूम है कि उस लड़के ने क्या कहा। उस लड़के ने यह नहीं कहा कि मुझे बॉक्सिंग कौन सिखाएगा, मैं कैसे सीखूं। उस लड़के ने कहा तो ठीक है तुम मुझे बॉक्सिंग सिखाओ। अब आप देखिए मतलब नो अल्टरनेटिव, नो इफ बट आइदर नाइदर जो हम अक्सर यूज करते हैं, तो मैं कहां से सीखूं, तो फिर ये कहते कि मैं पूछकर बताऊंगा, बात खत्म हो गई थी। उन्होंने कहा कि तुम मुझे बॉक्सिंग सिखाओ। तो मार्टिन ने कहा कि यस मैं तुम्हें बॉक्सिंग सिखाऊंगा। और मित्रों मार्टिन ने उसे बॉक्सिंग सिखाना शुरू किया। डेढ़ महीने के बाद ही वहां एक बॉक्सिंग कंपटीशन होना था और उस बॉक्सिंग कंपटीशन में इस 12 साल के लड़के ने अपने विपक्षी को, अपने मुकाबले में प्रतिद्वंदी को इतनी आसानी से धूल चटा दिया कि लोग देखकर के दंग रह गए कि अरे ये कौन है। और दोस्तों उसी प्रतियोगिता के साथ विश्व के महान मुक्केबाज की नींव पड़ गई और सच पूछे तो उसी दिन से गुस्सा और स्वाभिमान इस क्लेसियस क्ले की पहचान बन गई। गुस्सा और स्वाभिमान, वो चूंकि ब्लैक था, काले था, और अमेरिका में उस समय की बात है, काफी पहले की बात है, लगे ठीक है दास्ता प्रथा और वो सब का कानूनी और संवैधानिक बात अलग होती है, लेकिन एक व्यवहारिक बात अलग होती है दोस्तों, क्योंकि व्यवहार में समाज कैसे एक्ट कर रहा है वो बात अलग है, कानून कैसे कर रहा है वो बात अलग है। तो जो अफ्रीकी हैं, जो ब्लैक हैं, अमेरिका में और बहुत से दूसरे यूरोपीय देशों में भी एक तरह से सेकेंड सिटीजन के तौर पर माने जाते हैं, तो वो चीजें होती थी, उसको इस बात से बड़ी ठेस पहुंचती थी। इसीलिए याद रखिए कि उनका नाम क्लेसियस क्ले था, लेकिन इसके विरोध में, नस्लवादी नीति के विरोध में, या उनको जो इस तरह की उपेक्षा देखनी पड़ती थी, बर्दाश्त करनी पड़ती थी समाज के, उसके विरोध में उन्होंने फिर इस्लाम धर्म स्वीकार किया और अपना नाम इसके बाद मोहम्मद अली रख लिया, रहे हुए अमेरिका में ही। दोस्तों इन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात कही थी, उस बात को मैं यहां आपको बताना चाहूंगा। उन्होंने कही थी कि मैं कहीं भी होता और मैं कुछ भी करता, मैं बेस्ट होता, मैं सर्वश्रेष्ठ होता। मैं यदि कचरा भी उठाने वाला होता तो मैं दूसरों की तुलना में ज्यादा कचरा उठा रहा होता और ज्यादा तेजी के साथ उठा रहा होता। ये उन्होंने बात कही, और इस प्रकार मैं कचरा उठाने वालों में भी सर्वश्रेष्ठ होता। मैं मुख्य बात यह है कि मैं सुप्रीम होता, मैं सुपरलिटी डिग्री में होता, जो गीता में कृष्ण ने कहा, या पढ़ करके देखिए वो कहते हैं कि मैं पेड़ों में पीपल हूं, यानी कि मैं पेड़ भी हूं, फर्क मेरे में इतना ही है कि मैं पेड़ों में पीपल हूं। मैं पर्वत भी हूं, लेकिन मैं पर्वत में नगाधिराज हूं, हिमालय पर्वत हूं, उसमें भी मैं श्रेष्ठ हूं। मैं हाथी हूं और मैं हाथी में ऐरावत हूं, जो श्रेष्ठ हाथी हो सकता है मैं वो हाथी हूं। मैं ऋतु हूं, ऋतुओं में मैं वसंत हूं, जो श्रेष्ठ ऋतु हो सकता है। तो आप इससे क्या समझ क्या रहे हैं मित्रों? सवाल ये नहीं है कि वही चीज श्रेष्ठ है और मैं जब उसे पालूंगा तो मैं श्रेष्ठ बन जाऊंगा। इसको समझने की कोशिश कीजिए। दुनिया में सिविल सर्विस ही श्रेष्ठ नहीं है, दुनिया में उद्योग लगा देना ही श्रेष्ठ नहीं है, दुनिया में डॉक्टर इंजीनियर बन जाना ही श्रेष्ठ नहीं है। दुनिया में जितनी चीजें हैं वे सभी श्रेष्ठ की संभावनाओं से भरी हुई हैं। आपको उसमें एंटर करके खुद को उसके लायक बनाना है, उसमें श्रेष्ठता हासिल करनी है, फिर चाहे आप कचरा उठाने वाले ही क्यों न हों। मित्रों इसको समझने की कोशिश कीजिए। तो यह श्रेष्ठता आएगी कैसे? उन्होंने कहा कि मैं सबसे ज्यादा कचरा उठाकर और सबसे तेज गति से कचरा उठाकर वहां भी अपनी श्रेष्ठता को स्थापित कर दूंगा। तो आप मित्रों देख रहे हैं, उसने एक क्षण भी नहीं लगाया ये कहने में कि तुम मुझे सिखाओ, और सीखना शुरू कर दिया और डेढ़ महीने में प्रतियोगिता हासिल कर ली। तो मित्रों जो सफलता है, जो श्रेष्ठता है, चलिए श्रेष्ठता तो एक बड़ी चीज है, लेकिन जो सफलता है वो इस तरीके से आती है, इन रास्तों से आती है, बहाने बनाने से नहीं आती, काम करने से बचने से भी नहीं आती, और सच पूछिए तो सफलता की भी अपनी चेतना होती है, उसका भी अपना कॉन्शस है। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको कुछ करने के लिए कह रहा हूं, किसी भी वजह से आपने वह नहीं किया और वो आपके हित में मैं वो बात कह रहा हूं, आपने वो नहीं किया। मान करके चलिए कि एक बहुत बड़ा सिंह द्वार जो खुलने वाला था आपके और मेरे बीच में, जो एक बहुत बड़ा दरवाजा खुलने वाला था, जो एक राजमार्ग बनने वाला था, उसको आपने हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। अब मैं दोबारा आपसे कहूंगा ही नहीं कि तुम ऐसा करो। एक बहुत बड़ी संभावना की भ्रूण हत्या आपने कर दी। तो मित्रों, सफलता के ये जो प्रतिमान होते हैं, जो आधार होते हैं, ये जो सूत्र होते हैं, इनको समझिए। और सारे के सारे ये सूत्र कर्म में पैदा होते हैं, कर्म में जन्म लेते हैं, कर्म से ही जुड़े हुए होते हैं। और चूंकि कोई कर्म करना पसंद नहीं करता, इसीलिए वो उससे अपने आप को विड्रॉ कर लेता है। और जब आप उससे अपने आप को विड्रॉ कर लेते हैं, आपको विड्रॉ करने में संकोच नहीं होता है, अपराध बोध नहीं होता है, तो सफलता को आपसे विड्रॉ करने में संकोच क्यों होना चाहिए और उसको भी अपराध बोध क्यों होना चाहिए? जैसा कि मैंने कहा कि सफलता का भी अपना कॉन्शस होता है, उसकी भी अपनी एक चेतना होती है। इसको समझने की कोशिश कीजिए। सफलता कोई मृत जीव नहीं है, वो कोई चट्टान का टुकड़ा या गंदी मिट्टी का ढेर नहीं है कि जिसमें हलचल नहीं होती है। सफलता की तो जो चेतना होती है वो सुप्रीम कॉन्शस होती है, बहुत ही परिष्कृत चेतना होती है। तो मित्रों, आज के इस लाइफ मैनेजमेंट वाले पार्ट पर इतना ही। मैंने शायद थोड़ा सा वक्त ज्यादा भी ले लिया है। अब मैं आता हूं कल के AIR न्यूज पर। मित्रों, कुछ न्यूज हैं, कुछ अच्छी खबरें हैं। देखिए, एक शुरुआत जो खबर की हुई थी वो भारत और कतर के बीच हुए समझौते को लेकर हुई थी। मित्रों, इस आधार पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैसे कोई न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं होती है। आप न्यूज रोज सुनते हैं, सुनना ही चाहिए और पूरे ध्यान के साथ सुनना चाहिए, पूरे अटेंशन के साथ सुनना चाहिए और हर न्यूज को बराबर वेट दे करके ही सुनना चाहिए। वो तो सुनने के बाद फिर आप ये अनुमान लगाएंगे कि इनमें से कौन सा आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है और कौन सा कम महत्वपूर्ण है और कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन जब आप सुन रहे हैं तो फिर पूरे अटेंशन के साथ सुनिए, राइट? जब आप भारत और कतर की न्यूज सुनते हैं तो देखिए अब होता क्या है कि मैंने कहा कि ये इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है। क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है? हमारे प्रधानमंत्री जी 5 देशों की यात्रा पर जा रहे हैं। इसी यात्रा में अफगानिस्तान जैसे देश की इतनी महत्वपूर्ण यात्रा भी शामिल है, भारत और अफगानिस्तान की यात्रा। इस यात्रा परीक्षा की दृष्टि से मैं बात कर रहा हूं, पूरे हमारी विदेश नीति या आर्थिक आवश्यकता या राष्ट्रीय जरूरत के हिसाब से मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिविल सर्विस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बात कर रहा हूं, जो हमारे अभी तक के हमारे पास अनसॉल्व्ड पेपर हैं उनको देखते हुए बात कर रहा हूं। हाँ, ये बात अलग है कि हमारे सिविल सर्विस की जो जरूरतें हैं वो हमारी राष्ट्रीय जरूरतों से बहुत अलग नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी हमें चयन तो करना ही पड़ता है। तो इस लिहाज से ये न्यूज कोई बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है। मतलब मुझे ऐसा लगता है, हो सकता, मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, होना ही नहीं चाहिए और आप कोर्ट में चैलेंज कर दें कि ये कैसे आया था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन एक आधार बना करके तो हमें चलना ही पड़ता है। इस लिहाज से भारत और कतर के जो 7 समझौते हुए हैं, आपने न्यूज में सुना 7 समझौते हुए हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। उन समझौतों में आपने देखा कि कालाधन संबंधी समझौता भी है और स्किल डेवलपमेंट संबंधी समझौते भी हैं, इस तरह के समझौते शामिल हैं। जो सच पूछिए तो अक्सर जब हम बाहर जाते हैं, हमारे प्रधानमंत्री हों या राष्ट्रपति हों, तो हमारे देश की जो सबसे बड़ी प्रायोरिटीज हैं उन्हीं के आधार पर हम बातचीत करेंगे। हम तो उनसे वही चीजें चाहेंगे, जिसमें आपने ये भी सुना कि निवेश संबंधी समझौते भी किए गए, कि उन्होंने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने वहां रहने वाले लोगों का आह्वान किया कि आप आइए, भारत आइए और भारत में निवेश कीजिए, क्योंकि भारत अभी दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है और सूखे के बावजूद भारत ने 7.9% की वृद्धि दर प्राप्त की है, जो वास्तव में कमेंडेबल है, बहुत ही अभिनंदनीय और प्रशंसनीय है। इसमें देखिए कि जो सबसे इंपॉर्टेंट जो एक शब्द आया है वो आया है दोहा। दोहा शब्द आपने सुना होगा। दोहा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दोहा वार्ता आप बार बार पढ़ेंगे। जब भी आप वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात पढ़ेंगे, जब भी आप सब्सिडी की बात और अंतर्राष्ट्रीय सब्सिडी की बात सुनेंगे, कृषि विकास की बात सुनेंगे, तो आपको बार बार एक दोहा समझौता शब्द पढ़ने को मिलेगा। दोहा बेसिकली कतर की एक जगह का नाम है जहां सम्मेलन हुआ था, उसमें कृषि को सब्सिडी संबंधी बातचीत होनी थी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नेतृत्व में, लेकिन वो बात नहीं बन पाई थी। तो वो दोहा समझौता एक बहुत महत्वपूर्ण वार्ता रही है, दोहा वार्ता, तो इसलिए बार बार उसकी चर्चा होती है, तो वो आपके दिमाग में एक तरह से अंडरलाइन हो जाएगा। मित्रों, जो दूसरी खबर भारत अफगानिस्तान की थोड़ी सी थी, उस पर मैं बाद में आऊंगा, मैं अभी थोड़ी सी खबरों के बारे में आपको बता दूं। दूसरा, आपने देखा कि बैंक के बारे में खबर थी, आप देख रहे हैं कि जब से बैंकों ने अपनी तिमाही रिपोर्ट देनी शुरू की है, हमारे जो सार्वजनिक बैंक हैं वो लगातार अपना नुकसान दिखा रहे हैं, और कुल मिलाकर के जो सार्वजनिक बैंकों का जो नुकसान है, जो हानि है, वो लगभग 20,000 करोड़ रुपए के करीब पहुंच गई है, जिसको सुनकर के सच पूछे तो देश हिल गया है। 20,000 करोड़ रुपए, यानी कि अब ये 20,000 करोड़ रुपए सरकार बैंकों के उद्धार के लिए देगी, और ये जो सरकार 20,000 करोड़ रुपए देगी ये कहां से आएगा? इस पब्लिक का पैसा है, यानी कि बैंक से लोग कर्ज ले रहे हैं, उसको इंडिकेट भी किया है, देखिए हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने, हो क्या रहा है कि बैंक से उद्योगपति कर्ज ले रहे हैं, राइट। इसके बाद चलिए, एक तो इंडस्ट्री में नुकसान हो गया, अलग बात है, लेकिन विजय माल्या जैसे ऐश कर रहे हैं और भाग करके चले जा रहे हैं और बैंकों का कर्ज लौटा नहीं रहे हैं, बहुत से ऐसे उद्योगपति हैं अपने को डिफाल्टर घोषित कर दे रहे हैं, अपने को दिवालिया घोषित कर दे रहे हैं, ये बात अलग है कि उनके जीवन की पद्धति में कहीं भी कोई दिवालियापन दिखता नहीं है, लेकिन वो अपने को कर देते हैं और बैंकों का ऋण लौटाने से बच जाते हैं, और फिर सरकार पब्लिक के पैसे से बैंकों के इस नुकसान की भरपाई करती है। अल्टीमेटली मित्रों, इसका प्रभाव क्या होता है? इसका प्रभाव यही होता है कि पब्लिक का वह पैसा जो दूसरे डेवलपमेंटल कार्यों में लगना चाहिए था, वो न लग करके इस तरह के खजानों के हर्जानों को पूरा करने में लगता है, राइट। और जो इसके लिए दोषी हैं, उन पर कोई भी अपराध सिद्ध नहीं किया जाता, उनको कोई सजा नहीं दी जाती। ये हमारे अर्थव्यवस्था का बहुत ही दुर्भाग्यजनक पक्ष है, और जिसे काफी कुछ क्रोनिक कैपिटलिज्म के सिस्टम में देखा भी जा सकता है। तो मित्रों, आपको इस सिस्टम को समझना पड़ेगा, जो नॉन जो पेड जो एसेस संपत्ति है, जो वापस न आने वाली जो संपत्ति है, जो पैसा है बैंक का, इसको कैसे रोका जाए। और आप देख रहे हैं कि रिजर्व बैंक के गवर्नर भी इसके लिए बहुत हार्ड स्टेप उठा रहे हैं और सरकार भी कुछ इसी तरह की बातें करने लगी है। लेट्स सी कि क्या होता है, राइट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके डेवलपमेंट पर आपकी निगाह होनी चाहिए। मित्रों, इसके बाद एक और खबर थी जो अर्थव्यवस्था से ही संबंधित थी, आपने सुना, ये बहुत ध्यान देने की बात है और मैं समझता हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो है तेल के दामों को लेकर। अब इंटरनेशनल मार्केट में फिर से जो पेट्रोलियम के दाम हैं बढ़ने शुरू हो गए हैं। पेट्रोलियम के दाम गिरकर जहां तक मैं समझता हूं 33 या 36 डॉलर प्रति बैरल तक आ चुके थे, मतलब इस लेवल तक रेट गिर गए थे, और अब वो फिर से लगभग 50 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गए हैं, यानी कि कुछ दिनों पहले जो रेट थे उससे 1.5 गुना करीब वो तेल की कीमत बढ़ चुकी है, राइट। अब आप देखते हैं कि अभी जब 2 साल के का मूल्यांकन हो रहा था नरेंद्र मोदी जी की सरकार का, तो उसमें जब आर्थिक व्यवस्था की बात होती थी कि राजकोषीय घाटा कम हो गया है, ये हम कहते थे, है ना, मतलब फिजिकल डेफिसिट हमारा कम हो गया है, जो बहुत ही कमेंडेबल बात होती है, बहुत ही तारीफ की बात होती है। फिर यह भी होता था कि मुद्रा स्फीति पर नियंत्रण हुआ है, इन्फ्लेशन कम हुआ है, तो इसका श्रेय जब सरकार लेती थी तो जो समीक्षक हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं, इसको इस रूप में कंडम भी करते थे कि जो राजकोषीय घाटा हुआ है वो हमारी अपनी कोई आमदनी के कारण नहीं हुआ है, अपनी कोई विशेष आर्थिक नीतियों के कारण नहीं हुआ है, बल्कि जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तेलों के दाम बुरी तरह से गिरे हैं उसकी वजह से हमारा राजकोषीय घाटा कम हुआ है। तो ये कम कैसे हुआ? मित्रों, आपको मालूम है कि भारत अपनी जरूरत का लगभग 3/4 पेट्रोलियम आयात करता है। सच पूछे तो हमारे पास जो भी विदेशी मुद्रा होती है उसका लगभग 60-70% उस पूरे के पूरे को हम जो चीजें मंगाते हैं, जो आयात करते हैं, आयात जब हम कुछ भी वस्तु का करते हैं तो उसका भुगतान हमें विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है, आप वहां रुपया नहीं दे सकते। तो जब हम विदेशी मुद्रा का भुगतान करते हैं तो सोचिए कि हमारे कुल आयात का लगभग 60-70% भुगतान सिर्फ पेट्रोलियम पदार्थों के लिए होता है। तो जब पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत कम थी तो हम विदेशी मुद्रा कम भुगतान कर रहे थे। अब जब पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत बढ़ने लगी है तो पेट्रोलियम की क्वांटिटी तो वही रहेगी, उसकी मात्रा वही रहेगी, लेकिन जो डॉलर का भुगतान होगा उसकी मात्रा बढ़ जाएगी। और ये डॉलर कहां से निकलेगा? हमारे राजकोष से निकलेगा, यानी कि हमारे राजकोष में घाटा फिर से बढ़ जाएगा। अब देख रहे हैं, आपने वित्त मंत्री के स्टेटमेंट पर अगर ध्यान दिया हो तो हमारे वित्त मंत्री जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि अगर यह इससे और भी आगे बढ़ी, मतलब $50 तक तो पहुंच गया, और याद रखिए कि इससे पहले $125 तक रह चुकी है, $125 प्रति बैरल तक पेट्रोलियम की कीमतें हो चुकी हैं, तो अभी तो ये $50 है, 33-50 तक पहुंचा या 36-50 तक पहुंचा है, तो अगर ये इससे आगे बढ़ी तो इसका फिर दुष्प्रभाव हमारे देश की वित्तीय स्थिति पर भी पड़ेगा और मुद्रा स्फीति पर भी पड़ेगा। तो मित्रों, ये एक आपके लिए छोटा सा होमवर्क है, मैंने बैकग्राउंड में आपको बता दिया है कि ये किस तरीके से जो पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत है हमारे देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है, इसका बेसिक मैंने आपको बता दिया है, राइट। अब इस बेसिक का सहारा लेकर आप कोशिश कीजिए कि हमारे वित्त मंत्री जी की ये जो दो स्टेटमेंट हैं इनको आप समझें और इनकी एनालिसिस करें, और ये भी कोशिश करें कि इन पर 50-100 शब्द लिखें भी। मैं उनके स्टेटमेंट को फिर से दोहरा देता हूं कि यदि तेल की कीमत इससे अधिक, इससे भी आगे बढ़ते हैं तो इसका बुरा प्रभाव हमारे देश की वित्तीय स्थिति पर पड़ेगा और साथ ही मुद्रा स्फीति पर भी पड़ेगा। ये दो बातें उन्होंने कही, आपको ये देखना चाहिए। और मित्रों, फिर एक खबर थी जवाहर बाग को लेकर के, आप देख रहे हैं कि 3-4 दिनों से एक बड़ी दुर्भाग्यजनक खबर जो उत्तर प्रदेश में आगरा में जो जवाहर बाग है वहां किस तरीके से एक गुट ने कितनी बड़ी जमीन पर कब्जा कर रखा था, हथियार का जखीरा था, और वहां जब पुलिस ने उस जमीन को कब्जे से उनके मुक्त कराने के लिए जब वहां गई तो किस तरह से एक तरह से युद्ध जैसी स्थिति हो गई सो कॉल्ड, जिसमें 24 लोग और बाद में फिर आंकड़े 26-27 के भी आए हैं लोग मारे गए हैं, जिसमें हमारे पुलिस SP और पुलिस के लोग भी शामिल हैं, और बहुत ही मतलब समझ लीजिए कि दुर्भाग्यजनक घटना ये घटी है, उसको लेकर के खबर थी। दोस्तों, ये तो घटना है, इन घटना के पीछे क्या चीजें छिपी रहती हैं, किस तरह की बातें होती हैं, चाहे वो राजनीति की असफलता हो, चाहे वो प्रशासन की असफलता हो, चाहे वो समाज की असफलता हो, इन सब चीजों को जानने और समझने की कोशिश आप करिए। घटना अपने आप में परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन यह एक घटना एक उदाहरण हो सकती है कई अन्य तरह अन्य घटनाओं को समझने और समझाने के लिए। मित्रों, अब मैं थोड़ी सी बात इस पर आऊंगा आपके भारत और अफगानिस्तान के संबंधों पर। भारत और मैंने कहा कि जो प्रधानमंत्री जी की हमारी यात्रा है उसमें अफगानिस्तान की यात्रा सबसे महत्वपूर्ण यात्रा है, इसकी थोड़ी सी चर्चा मैंने इससे पहले भी आप लोगों से की थी। मित्रों, आपको मालूम है कि भारत एक तरह से अफगानिस्तान भारत का एक तरह से पड़ोसी देश ही है, ना पाकिस्तान के बाद बिल्कुल अफगानिस्तान है। भारत के लिए अफगानिस्तान इसलिए दो तीन मुद्दों के कारण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मित्रों, एक तो हमारा बिल्कुल पड़ोसी ही है, दूसरा यह है कि अफगानिस्तान भी तालिबानी जो आतंकवादी गतिविधियां हैं उनसे बहुत ज्यादा परेशान है, भारत भी आतंकवादी गतिविधियों से बहुत ज्यादा परेशान है। अफगानिस्तान अभी पाकिस्तान को यह दोष देने लगा है कि वो अपने यहां आतंकवादी गतिविधियों के ठिकाने को तश्रय दे रहा है, यह भारत के लिए अच्छा है कि अफगानिस्तान भी पाकिस्तान को ब्लेम करने लगा है। तो शक्ति संतुलन की दृष्टि से भारत और पाकिस्तान का बहुत क्लोज होना एक तरह से दोनों के हित में होगा। फिर आपने ये भी देखा है कि अभी हमारे प्रधानमंत्री जब ईरान गए थे तो वहां उन्होंने चाबार बंदरगाह के बारे में बात एक समझौता किया है, और ये जो रास्ता है ये बन जाने के बाद फिर अफगानिस्तान से होता हुआ वो मध्य एशिया तुर्कमेनिस्तान की तरफ जाएगा। तो इस रूप में भी भारत ईरान और अफगानिस्तान के रिश्ते काफी क्लोज हो रहे हैं। न्यूज में आपने ये भी देखा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने वहां 42 मेगावाट एक हेरात उनका जो प्रांत है वहां एक डैम का इनॉग्रेशन किया, ये भारत के लिए एक बड़ी एक दोस्ती का एक तरह से कह लीजिए कि नजराना है, और इससे डेफिनेटली जो अभी तक आतंकवादी गतिविधियों के कारण जो देश एकदम एक कह लीजिए कि टूट फूट सा गया है, जिसकी आर्थिक व्यवस्था बहुत लुंज पुंज हो गई है, तो उसके कृषि और उद्योग को इससे खासकर इस डैम से बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा। दोस्तों, वैसे भी भारत अफगानिस्तान में और भी दूसरे तरह के रचनात्मक कार्यों में लगा हुआ है, आधारभूत संरचना को विकसित करने में लगा हुआ है। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पाइपलाइन का समझौता है जिसे तापी पाइपलाइन कहते हैं, TAPI। इस पाइपलाइन की सबसे बड़ी विशेषता है कि हमारे यहां जो नेचुरल गैस है वो तुर्कमेनिस्तान से चलेगी वो गैस, फिर अफगानिस्तान आएगी, फिर पाकिस्तान होकर के वो भारत पहुंचेगी वो गैस। तो पाइपलाइन के लिहाज से भी अफगानिस्तान के साथ भारत के रिलेशंस बहुत मायने रखते हैं। तो मित्रों, इस लिहाज से भारत के लिए बहुत जरूरी है कि अफगानिस्तान की जो सरकार है उसमें स्थिरता रहे, एक अच्छी गवर्नमेंट वहां रहे और भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते बहुत मजबूत हों। और मैंने आपको बताया था कि 2013 में एक क्वेश्चन भी आया है, खासकर जब अफगानिस्तान में अमेरिकी फौज थी और अमेरिका ने यह फैसला किया था कि वो अफगानिस्तान से अपनी फौजें वापस बुलाएगा, उस समय भारत फिर अपनी सुरक्षा के लिए क्या कदम उठा रहा, इस तरीके से कुछ प्रश्न एक पूछा भी गया था। तो अगर उस लाइट में देखें, उस प्रकाश में देखें, तो हमारे लिए अफगानिस्तान का जो प्रश्न है सिविल सर्विस के लिहाज से वो ज्यादा महत्वपूर्ण बनता है। तो मित्रों, न्यूज से इतना ही। आज पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं कुछ प्रोवाइड कर रहा हूं, अब इतना वक्त नहीं है कि मैं उनके बारे में आपसे चर्चा करूं। एक है दोस्तों विदेश नीति पर, भारत की विदेश नीति पर दैनिक जागरण में छपा हुआ है कि नई ऊंचाई पर हमारी विदेश नीति बनी हुई है, पहुंच रही है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह से फ्रेंड्स, एक टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है जो अभी मैंने आपको कुछ समय पहले बताया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में फिर से एक नई सोच डेवलप हो रही है, क्योंकि ये इतिहास का हिस्सा है और जनरल स्टडीज का हिस्सा है, तो आपको इसके बारे में भी जानना चाहिए। तो टाइम्स ऑफ इंडिया का भी एक क्लिपिंग मैं आपको उसमें प्रोवाइड कर रहा हूं, इसके अतिरिक्त भी कुछ और क्लिपिंग्स हैं वो आप लोग देख लेंगे। तो मित्रों, न्यूज़पेपर्स के बारे में इतना ही। अब मैं अपने सभी उन दोस्तों के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मेल लिखकर डीएजी कहने लगे हैं आप लोग, डेली ऑडियो गाइडेंस के बारे में अपने विचारों से अवगत कराया है। उन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं, पंकज शर्मा जयपुर से, युवराज सिंह, संगीता, अभिषेक श्रीवास्तव, प्रीति बंसोड़ दुर्ग छत्तीसगढ़ से, जयदीप बेकरिया, सेजुल कुमार राजकोट गुजरात से, रजत बोलपुर से, मोहिनी रावत, किशन मेवाड़ा पालीताना गुजरात से, मनीष सिंगल चूरू राजस्थान से, विवेक रवि प्रकाश कुमार ओपी जाट अजमेर से, कुमार गौरव मुजफ्फरपुर से, राजीव कुमार सावर मल मीणा टोंक राजस्थान से, विनोद राठी, जगमोहन चौधरी, राजेश हरिओद और स्वाति त्रिपाठी, आप सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, इसी के साथ ही अब आज का यह डेली ऑडियो गाइडेंस यहीं समाप्त किया जाता है। आप लोगों से कल फिर मुलाकात होगी, ढेर सारी फिर से बातचीत होंगी, तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।